السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. आप लोग आजकल दौरे कुरान कर रहे होंगे और उसमें हर पारे में कुछ ना कुछ खूबसूरत बातों को अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रहे होंगे। आज इसी तरह एक आयत आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो सूरह आले इमरान की है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लज़ीना युन्फिकूना फिस्सराई वद्दराई वल्कादिमीना अलगैज़ वलआफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वो जो तंगी में और कुशादगी में वो खर्च करते हैं, और वो जो अपने गुस्से को पी जाने वाले हैं, और वो जो लोगों को माफ़ कर देने वाले हैं, ऐसे मुहसिनीन से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। जब आप कुरान करीम समझ रहे हो तो ज़रूर देखा करें कि कौन कौन सी आयत वो हैं जिनमें ये आता है कि अल्लाह ताला मोहब्बत करता है ऐसे लोगों से, क्योंकि वही क्वालिटीज़ हैं जो हमें अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी है। उनको हाईलाइट कर लिया करें। दौरा कुरान इसलिए नहीं होता कि सिर्फ हम उस पे से गुजर जाएं और बस सुनते रहें और आधे टाइम सर से गुजर जाए और कुछ सुना और कुछ नहीं सुना। अलर्ट रहने का टाइम होता है कि उस वक्त नोट हम करें, हमने अपने अंदर कुछ खूबियाँ लानी हैं और कुछ बुराइयों को छोड़ना है। अल्लाह ताला को कौन सी चीज़ नहीं पसंद कि जब आएगा अल्लाह ताला नहीं पसंद करता इनको। मसलन आता है कि अल्लाह ताला खयानत करने वालों को नहीं पसंद करता, नहीं उनसे मोहब्बत करता, उसको फौरन हाईलाइट कर ले। जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है उसको भी हाईलाइट कर ले। आपके पास एंड में एक लिस्ट बन जाएगी। आपको पता होगा कि मेरे रब को कौन लोग हैं जो महबूब हैं और कौन लोग हैं जो उसको नापसंद हैं। फिर अपना जायजा लेना आसान हो जाएगा कि मैंने इन बुराइयों को अपने अंदर से निकालना है अगर मेरे अंदर हैं, और ये खूबियां अपने अंदर पैदा करनी है अगर मेरे अंदर नहीं है। जैसे इस आयत के अंदर अल्लाह ताला किन से मोहब्बत करता है, वो जो देते हैं तंगी में और कुशादगी में। अब चाहे हाथ तंग भी है फिर भी देते हैं, चाहे कुशादगी है तब भी देते हैं। फिर इसी तरह वो लोग जो गुस्से को पी जाते हैं, गुस्से को काबू करना बहुत मुश्किल होता है। गुस्से के बाद इंसान, जिसको हम कहते हैं गुस्से में पागल हो गया, वाकई इंसान पागल हो जाता है और पागलों की तरह ही हरकतें करता है। कभी दीवारों पे टकरे मारता है, कभी मुक्के मारता है, कभी चीजों को ठोकरे मारता है, कभी दरवाजों को इतनी जोर से बंद करता है कि तोड़ने की हद तक पहुंच जाता है। तो जो गुस्सा है वो भी एक शैतान की तरफ से होता है, और उस वक्त शैतान इंसान पर काबू पाता है। शैतान इंसान के ऊपर ऐसे औकात में सबसे ज्यादा उसको वल्नरेबल समझ के, यानी ऐसे समझ लें कि जैसे इंसान वीक हो गया, जब इंसान इश्तियाल में होता है, तो जब गुस्सा आए उस वक्त उसको पी जाना बहुत बड़ी क्वालिटी है। ऐसे लोगों अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। उस वक्त भी वो इंसान सोचे कि मैंने मोहसिनीन में से बनना है, मैंने अपने गुस्से को पी जाना है। बोला कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है फलां के ऊपर, लेकिन यही इम्तिहान का वक्त होता है कि इंसान उस वक्त अपने आप को काबू कैसे करे। इंसान से अपना आप काबू नहीं हो रहा होता, और वो जो लोगों को माफ कर देने वाले, ये भी बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन किसने कहा कि जन्नत में जाना आसान है? जन्नत में जाना वाकई मुश्किल ही है, और मुश्किलात से गुजर के ही जाना होगा। यहाँ पे इस दुनिया में कई लोगों के साथ टकराव होगा, कई लोग बुरा सलूक भी कर लेंगे, कई लोग कुछ ऐसा भी कह देंगे जो हमें पसंद नहीं आता। मिजाजों में फर्क होता है, तबीयतों में फर्क होता है, इख्तलाफात हो जाती हैं। अब इस वक्त गुस्सा भी आता है और दिल करता है कभी भी इसे बात ना करें, और हम अपनी अना का मसला भी बना लेते हैं। और दूसरे ये कि लोगों को माफ करना, ये एक इतनी बड़ी खूबी है जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाता है कि उनकी जिंदगी में कैसे उन्होंने माफ किया और किस किस को माफ कर डाला, जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे लोगों को भी इंसान माफ कर सकता है कभी। अल्लाह अकबर। तो जब इंसान अपने आप को सोचता है ना कि मैं कोई बड़ी चीज नहीं हूं, तो माफ करना भी आसान हो जाता है, गुस्से को काबू करना भी आसान हो जाता है। गुस्सा दिमाग पे तभी चढ़ता है जब इंसान ये सोचता है कि मुझे ऐसा कह दिया, मेरी शान में गुस्साफी कर दी, मेरे साथ इसने ऐसे बात क्यों कर दी। तो अल्लाह ताला ने सूरह शुरा में फरमाया, जब इन्हें गुस्सा आता है तो वो माफ कर देते, यानी रिएक्शनरी नहीं होते। गुस्सा कोई दिलाने वाला काम करता है तो ये नहीं कहते तुमने मुझे चूंके गुस्सा दिलाया तो इसलिए मेरे तो नेचुरल बात थी कि मुझे गुस्सा करना ही था, नहीं, वो फिर काबू पा लेते हैं। तो ऐसे लोग अल्लाह ताला को बहुत महबूब होते हैं। हमने कोशिश करनी है कि हम उन लोगों में शामिल हो जाएं कि अल्लाह ताला हमें पसंद कर ले। आप देखें, हम ये तो दावा करते हैं कि हमें अल्लाह ताला से बड़ी मोहब्बत है, वल्लाहु आलम, ये सिर्फ मुंह की बातें हैं, ये वाकई दिल से भी मोहब्बत है। क्योंकि आज के दौर में जब हम देखते हैं इर्द गिर्द भी, और अपने दिलों का भी जायजा ले लें, और वैसे हमसे पूछा जाए कि हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है, तो कोई कहेगा मेरी औलाद से मुझे बड़ी मोहब्बत है, कोई कहेगा मुझे मेरे घर से मोहब्बत है, कोई वालदैन कहेगा, कोई कोई और रिश्ता गिनवाएगा, और कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से होनी चाहिए। यही ईमान की निशानी है, मोमिनों की ये निशानी है कि वो सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से करते हैं। मगर अगर देखें तो हमारे दिल, जाहिर है अल्लाह की मोहब्बत तो उसी दिल में आएगी जो कीनों से पाक हो, बड़ाइयों से अपनी पाक हो, नफरतों से पाक हो, हसद से पाक हो, बस बोझ भरे हुए उनसे पाक हो। तो इन चीजों से पाक होगा तो अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में आ सकती ना। अगर हमारे दिल इससे भरे हुए हैं तो हम जितना मर्जी कहते रहे मेरे हमारे दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत बहुत है, लेकिन वो आ नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ताला की मोहब्बत बड़ी पाक चीज है, गंदगी में नहीं आ सकती। आप गंदे बर्तन में दूध डालेंगे, आप अपने लिए गवारा नहीं करते गंदे बर्तन में मैं खाना डाल के खा लूं, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत को समझते हैं कि गंदे दिलों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत बस जाएगी, ऐसे नहीं होता। तो लिहाजा दिलों को साफ करना पड़ेगा, किसी के लिए दिल में गुस्सा है तो उस गुस्से को निकालना पड़ेगा। किसी को माफ नहीं किया हुआ क्योंकि दिल में अभी तक हमने वो पुरानी बातें रखी हुई हैं और उन्हीं को बार बार रिपीट भी करते रहते हैं, गाहे बगाहे हमें याद भी आती रहती हैं, संभाल संभाल के हमने उनको रखा हुआ है जैसे कि वो बहुत कीमती हैं, तो फिर ऐसे दिलों में कैसे अल्लाह ताला की मोहब्बत आएगी। तो सबसे कीमती मोहब्बत अल्लाह ताला की मोहब्बत है, जिसको ये नसीब हो जाए बहुत खुशकिस्मत है, और उससे भी बड़ी खुशकिस्मत ये है कि अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करने लगे। हाँ, कि अल्लाह किसी से मोहब्बत करे, और फिर हम चाहते सभी हैं कि अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन ना, क्या हमने इन कुराने करीम की आयात को कभी भी सामने रख के अपना जायजा लिया है कि ये आईना है हमारे लिए ना, इस आईने में हम अपने आप को देख सकते हैं कि इस लिस्ट पे मैं पूरी कितनी हद तक उतर पाई हूँ आज तक, 50%, 90% कहाँ पे हूँ। तो लिस्ट ही अगर सामने नहीं होगी तो फिर कैसे आप अपना जायजा ले पाएंगे। तो लिस्ट बना लें, क्योंकि हम अभी चूंकि कुरान से गो थ्रू कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हम इंशाअल्लाह ताला अपने लिए एक बड़ा ही ऐसा क्राइटेरिया जो साफ और शफाफ है वो अपने सामने रख सकते हैं। किसी की बातों की जरूरत नहीं कि कोई कहेगा कि हाँ आपको मोहब्बत है या मुझे मोहब्बत है अल्लाह ताला से, कोई भी जज नहीं कर सकता। हमें खुद इस आईने में अपने आप को देखना है, हमें खुद अपनी इवेल्युएशन करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको देखते रहेंगे। और दूसरी, अल्लाह ताला की मोहब्बत दिलों में आती है जब अल्लाह ताला की पहचान होती है। जो उस रब को पहचान गया वो यकीनन उसे शदीद मोहब्बत करने लगेगा। और पहचान के लिए जैसे हमने सिलसिला शुरू किया वह अस्माए हुस्ना समझने का, तो उसमें भी कोशिश ये होनी चाहिए और नीयत ये होनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला के नामों को सीखें और इनको अमल में लेकर आएं, अपनी जिंदगी में इनको प्रैक्टिस करें। और साथ साथ हम जैसे जैसे हर नाम देख रहे हैं, हम उसमें अपने लिए प्रैक्टिस के लिए भी पॉइंट्स देखते हैं कि हम किस तरह इस नाम से अपनी जिंदगी में कोई ना कोई चीज़ फिक्स करें या कोई चीज़ शामिल करें और कैसे हम इसके ऊपर अमल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं आज जो नाम अल्लाह ताला का बहुत खूबसूरत नाम, ये भी अल हकीम और अल हकम। ये अल हकीम अल्लाह ताला का नाम कुराने पाक में 90 से ऊपर दफा आया। ये ऐसा अजीम नाम है, बाज़ ने कहा 94 टाइम्स आया, बाज़ ने कहा 100 दफा आया, यानी बहुत ज्यादा दफा। और हर नाम एक जितना नहीं है, कोई नाम एक दफा आया, कोई 10 दफा आया, लेकिन जो ज्यादा दफा आया है उस नाम को हमें भी गौर से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या बात है इस नाम में। अब देखिए हकीम, अब हकीम से वैसे हमारे जहन में आता है माना हिकमत वाला, लेकिन जब हम दुनिया में किसी को हिकमत वाला कहते हैं तो हमारे जहन में कैसा आदमी आता है? एक बूढ़ा, एक झुकी हुई कमर वाला, कमजोर सा, कहते हैं बड़ा हिकमत वाला है, बड़ा हकीम है। तो दुनिया के मामलात में तो ऐसा हो सकता है, मगर जब अल्लाह ताला के लिए ये नाम आता है तो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वो अपनी मखलूक की तरह नहीं है। जब उसकी हिकमत की बात होती है तो उसकी हिकमत के साथ पावर है, कुव्वत है, कमजोरी नहीं है। और उसकी हिकमत बेमिसाल है, उसकी हिकमत हमेशा से है उसकी जात के साथ। ऐसा नहीं कि जैसे हमने देखा कि किसी इंसान के ऊपर टाइम गुजरता है तो उसके अंदर हिकमत आती है, कहते हैं उस वक्त मैं बहुत ही मिच्योर थी, उस वक्त तो मुझे समझ ही नहीं हुआ करती थी। यानी बाज दफा जवानी में, बाज दफा बचपन में हम अपने आप को ऐसे कहते हैं। अल्लाह ताला के साथ ये सिफत हमेशा से है, उसने सीखी नहीं है हिकमत, या ली नहीं है कहीं से हिकमत, या तजर्बात के बाद नहीं उसके पास हिकमत आई, उसके पास हमेशा से हिकमत है। वो अल हकीम है, यानी अल्टीमेट विजडम वाला। और जब हम इस नाम को देखते हैं तो इसमें विजडम भी है और अल हकम भी इसी से, हकम हकम मतलब फैसला करने वाला, रूलर, जज, वो भी इसी से है। तो ये नाम जब अल हकीम आता है तो अल अलीमुल हकीम भी आता है, इल्म वाला और हिकमत वाला, यानी उसके पास इल्म भी है और हिकमत भी है। और हिकमत ऐसी कि हर उसके काम में हिकमत है, यानी जितने भी उसके अफाल हैं सब हिकमत पे मबनी है। ये सारी कायनात उसने बनाई, जमीन, आसमान और जितनी भी मखलूकात हैं, ये ऐसे ही बेफायदा नहीं बना दी कि बेमकसद ही ऐसे ही बस किसी को भी पैदा कर दिया। इसे जो इनके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं ना अकलमंद, सूरह आले इमरान के आखिर में क्या है, रब्बना मा खलकता हाजा बातिला सुबहानक फ़कीना अज़ाब अन्नार, अल्लाह तूने ये सब बेकार पैदा नहीं किया, बातिल पैदा नहीं किया। वो ये क्या उठते हैं, जैसे जैसे कोई इंसान गौर व फिक्र करता है उसको पता चलता है कि इस कायनात में एक चीज भी ऐसी नहीं है जो बेकार हो, जिसका कोई मसरफ ना हो, यानी हर चीज हिकमत पे मबनी। तो हम पहली चीज इससे क्या सीखते हैं कि अल्लाह ताला ने जितनी चीजें पैदा की हैं वो सब उसकी हिकमत पे मबनी है। बास चीजों को हम सोचते हैं ना, भला इसको क्यों पैदा कर दिया, इसकी क्या जरूरत थी। और बास दफा हम खुद जब डिप्रेशन में होते हैं तो फिर हम सोचते हैं, मैं क्यों पैदा हो गई, मेरी क्या जरूरत थी, मेरे बगैर ही दुनिया चल रही थी, मुझे तो होना ही नहीं चाहिए था। नहीं, जैसे हर चीज की पैदाइश में उसकी हिकमत है, इसी तरह आपको पैदा करने में भी हिकमत है। उसने तो एक चींटी को भी यूं ही नहीं पैदा कर दी, तो आपको क्या ऐसे ही पैदा कर दिया। फिर इसी तरह हम अपनी तखलीक में बाज दफा बहुत यानी गैर मुतमईन होते हैं कि मेरा रंग ऐसा क्यों, मेरा कद इतना क्यों, मैं फलां जगह क्यों पैदा हो गई। तो याद रखें, तखलीक करने वाले ने हर एक अपनी मखलूक को वो कैसी है, वो कहाँ है, वो किस वक्त में पैदा होनी है, उसकी शक्ल कैसी होनी है, उसमें अपनी हिकमत के साथ उसको पैदा फरमाया। तो अगर मेरी अकल जितनी भी है, कम है या ज्यादा है, इसमें भी उसकी हिकमत है। मैं जिस घराने में पैदा हुई उसमें भी हिकमत है, मैं जिस ईयर में पैदा हूँ उसमें भी हिकमत है, जिस बरादरी में जिस मुल्क में पैदा हूँ उसमें भी उसकी हिकमत है, जिस वालदेन के घर पैदा हूँ उसमें भी उसकी हिकमत है, और फिर जिस तबके में पैदा हुई है, बहुत मालदारों के घर पैदा हो गई या कम माल वालों के पैदा हुई, उसमें भी हिकमत है। मैं एक औरत हूँ उसमें भी इसकी हिकमत है। ये नहीं कि हाँ मैं लड़का होती तो अच्छा था, लड़की क्यों पैदा हो गई, अच्छा मैं ऐसी शक्ल की क्यों पैदा हो गई, या मेरे घर बेटा क्यों नहीं पैदा हुआ, बेटी क्यों हो गई, या बेटी क्यों नहीं हुई, बेटा क्यों नहीं हुआ, मुझे क्यों ये नहीं मिला, फलां के पास इतना पैसा है हमें क्यों नहीं पैसा मिला, वो तो इतने अल्लाह के नाफरमान है, उनको पास क्यों इतना कुछ है, या उसको क्यों तरक्की मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली। सब उसके फैसलों के पीछे उसकी हिकमत है। मेरी शादी इस घराने में क्यों हो गई, मुझे अच्छे लोग क्यों नहीं मिले। तो इंसान के अंदर जितने एतराज आते हैं, याद रखिए वो सब खत्म हो जाते हैं अगर वो अल्लाह ताला के इस एक नाम के ऊपर ईमान रखता है। वो जब ये समझ जाता है कि मेरे पास ना इल्म है ना हिकमत है, और मैं अल्लाह ताला के फैसलों को नहीं समझ सकती, मेरी समझ भी छोटी मेरा इल्म भी छोटा, तब वो सबमिट कर देता है। और यही एक ईमान वालों के लिए जरूरी है, जब वो अल्लाह ताला की सिफात पर ईमान रखता है कि अल्लाह ताला अल हकीम है, मैं अल हकीम नहीं हूं, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला अल हकीम है, तो फिर इस चीज पर ईमान रखें कि उसका हर फैसला हिकमत पे मबनी है। ये हमारे दिलों में यकीन होना चाहिए, तब देखेंगे आप कि तमाम किस्म के आपके गिले शिकवे शिकायतें सब खत्म हो जाएंगे। वो चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है, वो किसके फैसले से हुई, वो अल्लाह ताला के फैसले से हुई है ना, ना मेरे जात मेरे कि मेरा जिस्म कितना हो, लंबा हो, या मेरी आंखें किस रंग की हों, या मेरे रंग कैसा हो, या मेरे बाल किस रंग के हों, या मैं किस मुल्क में पैदा हूँ, ये इनमें मेरा कोई इख्तियार नहीं। जिनमें इख्तियार नहीं, तो अल्लाह ताला की हिकमत पे भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पैदा किया तो उसमें उसकी हिकमत है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में फरमाया, वमा अना बिज़ल्लामिन लिलआबीद, मैं जुल्म नहीं करने वाला बंदों पर। तो जब हमें ये बात पता हो गई तो फिर अब हम मुतमईन हो जाते हैं, हमें ये पता है कि अल्लाह ताला ने अपने इल्म की बिना पर ये फैसला किया, और अपनी हिकमत की बिना पर फैसला किया, और उसके पास पूरी कुदरत है कि वो अपने फैसलों को नाफिज भी कर सके। अल हकम वही होता है जो बेहतरीन फैसला करने वाला हो, जो दानाई पे मबनी फैसला करने वाला हो, जो अपना फैसला इम्प्लीमेंट भी कर सकता हो। देखिए, हम फैसले तो बहुत सारे करते हैं लेकिन हमारे फैसले चलते नहीं हैं, मसलन हम अपने बच्चों के ऊपर ही बहुत सारे फैसले फूसने की कोशिश करते हैं लेकिन बच्चे नहीं मानते तो हम बेबस हो जाते हैं। अल्लाह ताला वो पावर रखता है कि जब वो फैसला कर लेता है तो वो अपने फैसले को इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। तो उसके फैसले उसकी हिकमतों पे मबनी है। तो हकम अल हकम है और वो अल हकीम भी है। ये दोनों नाम हमें इससे पता चलते हैं उसका हर फैसला सही फैसला है। अल हकम का मतलब ये है वाकई क्या मैं अल्लाह ताला को अल हकम समझती हूं, क्या वाकई मैं अल्लाह ताला को अल हकीम मानती हूं। और उसका ये नाम अल अजीज अल हकीम कुरान करीम में बहुत दफा आया है। अजीज मतलब है पूरी अथॉरिटी रखने वाला, जो चाहे करे। जब किसी के पास इतनी अल्टीमेट अथॉरिटी आ जाए कि वो जो चाहे करे तो फिर बताएं वो कैसे फैसले करता है, फिर वो क्या करता है। आपने देखा होगा जब किसी के पास ऐसी हुकूमत आ जाए कि उसको फ्री हैंड मिल जाए, कोई उसको पूछने वाला नहीं, उसके ऊपर कोई हिसाब किताब अकाउंटेबिलिटी वाला है ही नहीं, तो फिर वो क्या करता है, फिर वो जुल्म करने लगता है, फिर वो लोगों के हकूक छीनने लगता है, वो ज्यादतियां करता है, किसी को जिसको चाहता है लटका देता है, जिसको चाहता है कुछ भी दे देता है। लेकिन अल्लाह ताला वो अल अजीज है, उसके पास फुल अथॉरिटी है, इसके बावजूद वो जुल्म से फैसले नहीं करता, उसके फैसले फिर भी हिकमत पे मबनी है, अल हकीम है वो। इसलिए अल अजीज और अल हकीम साथ साथ आते हैं। इसके बाद हम एक और चीज देखते हैं अल्लाह ताला की अल हकीम होने में, वो ये कि जब अल्लाह ताला हमें कोई हुक्म देता है यानी हमारी जिंदगी के कोई फैसले या शरई अहकामात उसने किए हैं, तो उसके अंदर भी हमें ये यकीन रखना है कि उसकी हिकमतें हैं। मसलन जैसे अल्लाह ताला ने विरासत के अहकामात दिए, बेटी को इतना हिस्सा मिलेगा, बेटे को इतना मिसला। हम तो सोचते हैं ये क्या बात हुई, मेरी तो एक ही बेटी है, मैंने तो उसको बेटों के बराबर देना है। हम ये नहीं कर सकते कि विरासत को हम अपने मुताबिक सोचें कि मैं ये समझती हूं कि ऐसे सही है तो इसी तरह। ये तो अल्लाह ताला ने अपने नबी के हाथ में भी नहीं दिया, ये तो अल्लाह ताला ने कवानीन खुद नाजिल फरमाए, लेकिन हमें लगता है कि हमें ज्यादा पता है। कि अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए हैं हमें वो सारे हिकमत पे मबनी है, ये यकीन होना चाहिए। पर्दे के अहकामात हिकमत पे मबनी है। अब हम कहें कि हमें तो ये पसंद नहीं है, हमें तो ये समझ नहीं आती, हमें तो लगता है कि ये इसकी जरूरत ही नहीं है, बस नजरों का पर्दा होना चाहिए। तो फिर वो क्या हमने ये समझ लिया कि अल्लाह ताला ने ये फैसला ऐसे ही दे दिया, इसमें कोई हिकमत नहीं। इसमें हिकमत है, हमें कोई भी फैसला चाहे समझ आए या ना आए, हमने ये कहना है ये फैसला हिकमत पे मबनी है, इसलिए समय ना वताना झुका दे अपने आप को। इसी तरह अल्लाह ताला ने औलाद के हकूक रखे, वालदेन के हकूक रखे, रिश्तेदारों के हकूक रखे, मसाकीन के हकूक रखे, इन्फाक करने का हुक्म दिया, हलाल रिस्क कमाने का हुक्म दिया, हलाल और हराम के अहकामात दिए, इन सारों में हिकमतें। नमाज का हुक्म दिया, रोजे का दिया, जकात हज के अहकामात दिए। हम कहें ये तो हमारे लिए बोझ है, ये तो हमसे नहीं किए जाते, ये क्या बात हो गई, लो भला ये कैसे हो सकता है, ये तो अजीब सी बात है। ये सब इतराजात करने की मिजाल हमें कैसे हो सकती है अगर हम ये मानते हैं कि वो अल हकीम है और उसका हर फैसला हिकमत पे मबनी है, कोई खाली नहीं है हिकमत से। अल्लाह अकबर। तो हम जब ये मान जाते हैं तो फिर हमारे इतराजात खत्म हो जाएंगे, शिकायतें नहीं रहेंगी। इसी तरह अगर जिंदगी में कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई गम आ जाए, कोई आजमाइशें आ जाए, तब भी यही सोचना है इसमें अल्लाह ताला की हिकमत है। ये नहीं कहना होगी कोई हिकमत, होगी नहीं, है इसमें। अपने आप को यकीन दिलाना है क्योंकि मैं अल्लाह ताला के इस खूबसूरत नाम अल हकीम के ऊपर ईमान रखने वाली। आप देखिए आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर तोहमत लग गई। देखने को ये किस तना मुश्किल काम है। एक औरत की सबसे बड़ी चीज उसके लिए उसकी इज्जत होती है, और उसकी इज्जत पे हर्फ आ जाए, लोग बातें बनाने लगे, घर घर बातें होने हो रही हैं, एक पाक दामन औरत जिस के ऊपर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता, उसके ऊपर अब उंगलियां उठने लगी। एक कितनी बड़ी गम की बात थी उनके लिए, और वो रो रो के हलकान हो गई थी। लेकिन अल्लाह ताला ने उसके अंदर भी खैर रखी थी, उसमें भी उसकी हिकमत थी, और ये खैर नजर आती है। फिर तो मोमिन के लिए हार अल्लाह ताला के फैसले में खैर ही होती है, इसका भरोसा होना चाहिए। बाज दफा उस वक्त समझ नहीं आती कि क्या खैर है, हम कहते हैं भला इसमें क्या खैर हो सकती है। हो सकता है अल्लाह ताला पाक करना चाहता हो गुनाहों से, हो सकता है अल्लाह ताला दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालना चाहता हो सकता है अल्लाह ताला गुनाहों को दूर करना चाहता हो सकता है अल्लाह ताला दर्जात को बुलंद करना चाहता हो, और हो सकता है अल्लाह ताला किसी ऊंचे मकाम पे इंसान को पहुंचाना चाहता हो, उसके लिए उसको रीशेप कर रहा हो। इसमें डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ताला देख सकता है कि आज से 10 साल बाद उसका क्या प्लान है कि हमें किस मकाम पे पहुंचाए। उस मकाम पे पहुंचने के लिए हमें एक भट्टी से गुजारना होगा उसको, ताकि हम सोने से कुंदन बन जाए, हमारी इम्प्योरिटीज खत्म हो जाए। अल्लाह ताला वो इम्प्योरिटीज हमारी जिंदगी से निकालना चाहता है, क्योंकि वो हमें वो आला मकाम देना चाहता है, हमें मजबूत बनाना चाहता है, हमें अपने काम का बनाना चाहता है। हो सकता है ये हो। अब वो उस मशीन से गुजरेंगे। अब आपको देखें कोयला हीरा कैसे बनता है, जब वो एक प्रेशर के अंडर आता है, इतना प्रेशर होता है उसके बाद वो हीरा बनता है। तो ये प्रोसेस है जिससे गुजर के इंसान एक मकाम तक पहुंचता है। दुनिया में भी अल्लाह ताला ने उसे कोई काम लेना होता है, उसको अपने काम का बनाना होता है, और वो छुई मुई लोग, ऐसे लोग जो इतने नाजुक हैं, वो तो वो काम नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने उनको कहीं से गुजार के फिर कुछ सिखाना होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी देख लें, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी किन किन मरहलों से अल्लाह ताला ने अपने नबी को गुजारा। हालांकि वो अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे, प्यारे बंदे, फिर भी अल्लाह ताला ने उनको उस भट्टी से गुजार कर और फिर कहाँ तक, तख्ते मिस्र तक पहुंचाया। तो ये अल्लाह ताला जानता है, उसमें उसकी हिकमतें होती हैं। और हम रोने बैठ जाते हैं, मेरा क्या कसूर था, मुझे क्यों इसमें से इन मुश्किलों में से गुजरना पड़ रहा है, पता नहीं अल्लाह ताला को मेरे से तो कोई मोहब्बत ही नहीं है, और ऐसे है, और मैंने क्या ऐसा कसूर कर दिया। हालांकि उसमें अल्लाह ताला की मोहब्बत होती है, उसकी हिकमत होती है। तो गम ना किया करें, अल्लाह ताला की हिकमतों को अगर हम पहचानने लगें तो फिर हम तो बड़े कामिल हो जाएं। लेकिन हमें भरोसा करना पड़ेगा। अब एक माँ बच्चे को, अब माँ और बच्चे की तो फिर भी अकल का आप कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के मुकाबले में माँ हम तो कुछ भी नहीं है। तो अब एक माँ ही है, वो बच्चे को कहती, बेटा तुम्हें नहीं समझ है, मैं तुम्हें जो सुबह को जगा रही हूँ, स्कूल भेज रही हूँ, इसमें तुम्हारे लिए कितनी भलाई। वो बच्चा कहता है, तो आपको मेरे से बड़ी दुश्मनी है, देखिए आप मुझे उठाती हैं, मुझे नींद से जगाती हैं, फिर मुँह धोती हैं, और ऊपर पानी के छींटे पड़ते हैं, और फिर मुझे स्कूल के लिए तैयार करती हैं, आप तो मेरी दुश्मन है, आपको मेरे से मोहब्बत नहीं। अब वो माँ कैसे समझाए इसको, इसको नहीं समझ है। तो कई हिकमतें हमें इस दुनिया में पता चल जाती हैं, कहीं हमें पता ही नहीं चलनी, हमें पता नहीं चलेंगी सारी जिंदगी। और जब हम वहां आखिरत में पहुंचेंगे ना, फिर उसके जब अजर देखेंगे, तो फिर कहेंगे हाय काश हमारी भी जो जिल्दें हैं वो कैंचियों से काटी जाती, हम सब्र करते, और हमारे भी ये दिन देखने को आता कि हमें भी ये दर्जे मिलते। लेकिन इंसान जिंदगी में इतना थुड़दिला हो जाता है, वो अपने रब के ऊपर भरोसा नहीं करता, उसको नहीं ये सोच आती कि ये मेरा अल्लाह मुझसे पता नहीं मुझे क्या देना चाहता है, मुझे नहीं पता अल्लाह, मगर मुझे तेरे ऊपर भरोसा है, तू जो भी मेरे लिए कर रहा ना वो अच्छा ही है। हम ये क्यों नहीं कह सकते? तो इसीलिए हम अल्लाह ताला के ये नाम सीख रहे हैं कि हम उसके ऊपर भरोसा करना सीखें, हम ये समझ जाएं। बस वो हिकमत है, इसमें भी हिकमत, उसमें भी हिकमत, हर वक्त हम ये कहने वाले हो जाए कि बस ये सारा कुछ हिकमत पे मबनी है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का फैसला है ना। जब उसका फैसला है तो बस फिर मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं खुश हूं उसके हर फैसले पे, क्योंकि मेरी कहाँ अकल और समझ है। ये होना चाहिए रवैया हमारा, मगर हम चूंकि कमजोर से इंसान हैं, हम बस बदगुमान जल्दी हो जाते हैं उस अपने रब के बारे में जो इतनी मोहब्बत करने वाला है, इतनी हमारी खैरख्वाही करने वाला है, इतनी हम पर रहम और शफकत करने वाला है, उसी से हम बदगुमान हो जाते हैं। और ये कितनी बुरी बात है अपने रब से बदगुमान होना, जो तुम्हारा खालिक है, जो तुम्हारा मालिक है, जो तुम्हें सब कुछ देने वाला है, जो तुम पर इतने एहसानात करने वाला, उससे बदगुमान होने। वो तो अल करीम है, करम करने वाला है, वो तो अल रऊफ है, शफकत करने वाला है, वो तो अल वदूद है, मोहब्बत करने वाला है, वो तो अल रहमान है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। उस मेहरबान रब से तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म करेगा, वो तुमसे कुछ छीनना चाहता है, वो तुम्हें तकलीफों में रखना चाहता है, उसको इससे क्या फायदा होगा तुम्हें तकलीफ दे के? तुम तो उसकी मखलूक हो, उसने तुम्हें अपने हाथ से पैदा किया है, वो तुमसे मोहब्बत करता है। तो इस चीज को अपने दिल में बिठाएं। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा था उस औरत को जो कि अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, उसका बच्चा गुम हो गया था, एक जंग में जंगी कैदियों में से थी, जब उसको उसका बच्चा मिला, वो इतनी फरते जज्बात में आके उसको गले लगाती है और उसको जल्दी से दूध पिलाने लगती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ऐसा मौका होता था उसे भी सहाबा को सिखाते थे। पूछा सहाबा से, क्या तुम सोचते हैं ये माँ अपने बच्चे को आग में डाल देगी? सहाबा ने कहा, कभी भी नहीं। आपने फरमाया, फिर तुम कैसे सोच सकते हो अल्लाह ताला अपने बंदे को आग में डाल? वो नहीं चाहता कि उसके बंदों को आग पहुंचे, अजाब पहुंचे, जब भी तो वो अपनी पहचान कराता है, आओ उस रब की तरफ जो अल हकीम है, उसकी हिकमतें पर्दों के पीछे छुपी हुई है, वो हिकमतें हम नहीं जान सकते, हमारी अकल बहुत छोटी है, बहुत छोटी। इसको मान जाए, जिस दिन हम मान गए ना हमारी अकलें बहुत छोटी हैं, तो बड़े मुतमईन हो जाएंगे, और जब हमें लगता है कि हमें समझ आनी चाहिए तब हम मानेंगे, तो वो ईमान लाना क्या ईमान हुआ? ये सब सब कुछ डिपेंड हमारी अकल पे करता है कि हमें जो शरीयत में अहकामात है वो भी जब तक समझ ना आए तब तक हम मानेंगे नहीं, वो जो फैसले हमारी ज़िंदगी में उसने किए हैं वो भी जब तक समझ ना आए तब तक नहीं मानेंगे, वो जो हमारे हाथ में नहीं जैसा उसने हमें बना दिया, जो उसकी तख्लीक के फैसले हैं वो भी जब तक समझ ना आए हमने मानने नहीं है, तो फिर अपनी मानेंगे ना हम, फिर अल्लाह ताला की तो ना मानी, फिर तो हम अपनी मान रहे हैं कि जब मुझे समझ आए फिर तो मैंने अपनी अकल की मानी। तो इसलिए अल्लाह ताला के इस नाम को जब हम समझेंगे तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला अपनी जिंदगी में से एतराजात, गिले, शिकवे ये खत्म कर देंगे, और जब हमारी जिंदगी में कोई भी मसले मसाइल आए तो हम अल्लाह ताला की हिकमतों के ऊपर भरोसा करते हुए सब्र करेंगे। तीसरी चीज ये कि हम अल्लाह ताला से हिकमत मांगेंगे, ऐ अल्लाह हमें हिकमत अता फरमा, कि तू अल हकीम है, तू हमें हिकमत समझदारी अता फरमा दे। हिकमत यही होती है कि इंसान सही जगह पे सही फैसला करे, कब बोलना है, कब चुप रहना है, और क्या बोलना है, और क्या मामला करना है, और किस तरह से जिंदगी में चलना है। बड़ी हिकमतें, बड़ी समझदारियां चाहिए। तो अल्लाह तू अल हकीम है, तू हमें हिकमतें अता फरमा। और कुरान को भी कुराने हकीम कहा जाता है, तो ये भी बड़ी हिकमत वाला अल्लाह ताला का कलाम है, इसमें हिकमतें हैं, इसके साथ जुड़ जाएं तो हिकमतें जिंदगी में आ जाएंगी। तो अल्लाह ताला हमें अपने इस नाम के मुताबिक अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आज जो हम इंशाअल्लाह ताला दुआ देखेंगे वो भी दुआ बहुत ही खूबसूरत दुआ है, और ऐसी दुआ है जो कि हमें हमेशा मांगनी चाहिए। सूरह आले इमरान में ही ये दुआ आती है, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, के अल्लाह मेरे दिल को टेढ़ा ना कर देना हिदायत देने के बाद। ये जब हम अल्लाह ताला की हिकमतों को नहीं भी समझ रहे, और हमारे दिल अल्लाह ना करे कहीं हमारे दिलों में शिकवे शिकायतें आ जाएं, कहीं कोई नाशुक्री के कलिमात ना बोल दें, कहीं गुमराही के रास्ते पे ना चले जाएं, इंसान को पता नहीं चलता, वो सीधा चलता चलता कभी टेढ़ा हो जाता है, कहीं ये ना हो कि किसी और तरफ ही निकल जाए, तो दिलों में कजी ना आ जाए, दिलों को सीधा रखना, इस्तकामत के साथ कि मैं चलती रहूं हिदायत के रास्ते पे, कहीं बीच में ही डावाडोल ना हो जाऊं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी से सिमिलर एक और दुआ भी है ना, वो मांगा करते थे, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीन, ए दिलों को उलट फेर करने वाले, मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर जमा देना। तो दिल है ना, ये बस उलट पुलट कर होता रहता है, ये अल्लाह ताला की दो करीम उंगलियों के दरमियान है, जिधर चाहे इसको फेर दे। तो अल्लाह तूने हिदायत की नेमत दे दी है ना, तो अल्लाह ताला हम तुझे तेरी रहमत का ही वास्ता देते हैं कि अल्लाह हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाना और हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना, हिदायत की नेमत छीनना ना। ठीक है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी दुआ करते थे ना, अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिनल हौली बादल कौल, कि अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ तुझसे, तेरी पनाह में आता हूँ कि खैर के बाद खैर को छीन के इसको तू शर में बदल दे, कि खैर के बाद शर आ जाए। ठीक है, तो और फिर वहबला ना मिला तुमका रहमा, और रहमत तो हम सबको चाहिए ना, और रहमा है कि यानी इसके अंदर नकेरा है ना, तो वसी रहमत दे दे, कितनी रहमत, रहमत कसीर, अल्लाह ताला बहुत रहमत दे दे, नकीरा में वुसत आ जाती है। तो और हर किस्म की खैर और रहमत भी बेहिसाब, क्योंकि अल्लाह ताला अल वहाब है, नक अंतल वहाब, बहुत अता करने वाला, जो देता है ना तो वो बेहिसाब किताब दे सकता है। हमारा तो छोटा सा जहन है, हम तो थोड़ा सा ही मांगते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के खजाने बहुत ज्यादा हैं। तो अल्लाह ताला तू अपनी अता को देखना, अपने देने को देखना, अपनी शान के मुताबिक देना, क्योंकि तू अल वहाब है, तू अपनी शान वहाबियत के मुताबिक अता फरमाना। ये दुआ बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी हम में से ये भरोसा नहीं कर सकता कि मैं आज अगर सीधा चल रहा हूं तो कल भी मैं सीधा चलता ही रहूंगा, और मुझे, मैं तो बिल्कुल पक्का हूं, और मैं, मुझे तो कोई हिला नहीं सकता, और मैं तो बिल्कुल तौहीद पे हूं, और मैं तो बिल्कुल ऐसे हूं, ये कोई भी हम में से ये भरोसा करके नहीं रह सकता। तो इसलिए ऑलवेज अपने लिए ये मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें हिदायत पे रखना है, अल्लाह हिदायत की नेमत छीन ना लेना, अल्लाह सीधे रखना, दिलों को टेढ़ा ना कर देना। देख, बहुत वसवास आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप देखें कि हम अपनी जिंदगी में देखें तो बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कि कभी कोई ऐसी चीज मुंह से ना निकले, कभी कोई ऐसी बात ना हो जाए जो अल्लाह ताला की नाराजगी की हो। आज जो हम जिक्र है वो जिक्र करते हैं, जो बड़ा बेहतरीन दुआ भी है, कि उसके अंदर जिक्र है, दुआ है, वो क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ही अला कुल्ली हाल करें, कहें हर हाल में अल्लाह ताला को शुक्र है। अगर आपको कोई चीज नहीं भी पसंद आती ना, तब भी कहें अल्हम्दुलिल्लाह ही अला कुल्ली हाल, क्योंकि आज हमने क्या समझ लिया कि हर चीज जो भी हमें नहीं भी समझ आ रही, वो मतलब कुछ परेशानी की है, कुछ सही नहीं लग रही, वो भी अल्लाह ताला की हिकमत के मुताबिक है, तो उसमें भी कोई खैर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही अला कुल्ली हाल, और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मीजान को भर देता है। ये कलमा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, जब आप ये शुक्र का कलमा अदा करते हैं, अल्लाह ताला आपको और नेमतें अता करेगा। ला इन शकर तुम ला अजीदन्ना को, अल्लाह ताला ने फरमाया जब शुक्र करोगे तो तुम्हें और अल्लाह ताला अता करेगा। तो आपने शुक्र गुजार रहना है हमेशा, गिले शिकवे शुक्र को मिटा देते हैं। ये जो अंदर तंगी आती है ना दिल के अंदर, कि क्यों ऐसा हो गया, ये क्यों है, और या नाशुक्री जब कलिमात मुंह से निकलते हैं, तो ये शुक्र को खत्म कर देते हैं। तो इसलिए हमें शुक्र अदा करने वाला रहना है, दिल में तंगी भी हो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छी चीज मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मु सालिहा, तब भी ये नहीं कि मेरी कोई बड़ाई है, नहीं, तब भी सारी तारीफें अल्लाह के लिए जिसकी इनाम से ये नेक काम मुकम्मल हुए। और फिर अगर परेशानी भी आ गई तो भी अल्हम्दुलिल्लाह ही अला कुल्ली हाल, तो हर हाल में ही अल्हम्दुलिल्लाह। उठते बैठते चलते फिरते अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही हमारी जुबान पे हमेशा रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा ले और इन्हीं में उठाए कि हम इसी तरह अल्लाह ताला की हमद बयान करने वाले रहें और कयामत के दिन हम्मादून में हम शामिल हो, जो बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की हमद करने वाले हैं। ऐसे भी लोग कयामत में होंगे, हम्मादून होंगे, तो अल्लाह ताला उनमें हमें उठाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।